खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवस्युतं देवं कंसचाडुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भोली सच्चिदानंद घन भगवान की। प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् सत्यनारायण नारायण नारायण सत्य सत्य नारायण 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 सत्य येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्री यण बद्री नारायण 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 बद्री यण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् गुरुदेव नारायण 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 गुरुदेव यण गुरुदेव नारायण 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 गुरुदेव श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् सब जग नारायण 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 सब जग यण सब जग नारायण 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 सब जग नारायण सब जग नारायण 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 सब जग यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् यण जप मन नारायण 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 जप मन नारायण रट मन नारायण 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 रट मन यण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भोली सच्चिदानंद घन भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की राजा रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जगज्जननी अम्बे माता की सद्गुरुदेव भगवान की अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घरघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मस्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद के ये क्षण परम पावन दिव्य भूमि श्री प्रेमपुरी आश्रम का सुंदर प्रांगण महापुरुषों की भगवान की हमारे और आपके ऊपर असीम अनुकंपा कि सुंदर स्थान शुभ शांत प्रातःकालीन अमृत बेला के इस काल में हम लोग नित्य प्रति सत्संग सुधा वर्षा में गोता लगाते हैं। उन महापुरुषों का परमेश्वर का बारंबार धन्यवाद करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज संवत्सर का अंतिम दिवस है ना, इंग्लिश के हिसाब से 31 दिसंबर है। देखो अभ्यास ना होने से अपनी चीजें सब भूल गए कि नहीं, विस्मृत हो गए हैं। तो आज हमारे संवत्सर का अंतिम दिन है और कल जो है 9 संवत्सर का प्रथम दिवस होगा, हमारा नया वर्ष 9 संवत्सर प्रारंभ होगा। तो आज हम लोग जो है मिल रहे हैं, 1 साल बाद पुनः मिलन होगा कल हैं, तो 31 दिसंबर है आज हम लोगों का। तो ऐसा अपनी चीजें धीरे धीरे हम लोग सनय सनय सब भूल गए, बच्चों को तो मालूम भी नहीं है। तो ऐसा सुंदर ये संयोग कि हम लोग जो है 9 संवत्सर में कल प्रवेश करेंगे। वर्तमान में हमारा जो सत्संग का विषय है श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध, भगवान की बाल चरित्र बाल चपल लीलाओं को माध्यम बनाकर अध्यात्म की गहन गहराइयों का जो चिंतन करने का हमने जो है निश्चय किया है कि किस प्रकार से भगवान के साधारण से दिखाई देने वाले लीला चरित्र जिनके अंदर अध्यात्म की असीम गहराइयां समाई हुई हैं, तो भगवान की उन लीलाओं का आनंद जब आएंगी तो उस समय हम लोग लेंगे। लेकिन अभी स्वयं सुखदेव जी राजा परीक्षित को वर्षा ऋतु ऋतुओं को माध्यम बनाकर जो उपदेश कर रहे हैं, साधारण सी दिखाई देने वाली जो चीजें हैं, साधारण सी दिखाई देने वाली जो ऋतुएं हैं, उनके अंदर भी अध्यात्म की वही गहराइयां भरी हुई हैं जैसा कि हम लोग नित्य प्रति अनुभव कर रहे हैं। सुखदेव जी, हमारा जो विषय चल रहा था, कहते हैं किस प्रकार से मेघ गमो सवा हृष्टा प्रत्यनंद शिखंडिना ग्रहेशु तप्ता निर्विणा यथाच्युजनागमे, जैसे एक तीनों तापों से तपते हुए गृहस्थ के जीवन में जब किसी भक्त का आगमन हो जाता है, कोई आत्मतृप्त व्यक्ति उनको प्राप्त हो जाता है, तो जैसे मेघों को देखकर वो मोर नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार से वो गृहस्थ भी जो थोड़ी देर के लिए चिंता मुक्त अपने आप को अनुभव करने लगता है, जो तीनों तापों में जल रहा था और भगवान के भक्त की उसको प्राप्ति हो गई, जैसे वो मेघ वैसे वो भगवान का भक्त थोड़ी देर के लिए उसके जीवन से तीनों तापों का हरण कर लेता है और उसके पश्चात पित्वापा पादपा पद्धेर, हमने इस श्लोक के माध्यम से जाना कि इस प्रकार से जो है सकाम तपस्वी, कहते हैं प्राक क्षमास तपसा श्रांता यथा कामानुसेवया, जब किसी सकाम तपस्वी की कामनाएं पूर्ण होती हैं तो जिस प्रकार से वर्षा का जल पी करके जो है सूखे हुए वृक्ष हरे हो जाते हैं, उसी प्रकार से कामनाओं के पूर्ण हो जाने पर अपनी सिद्धि को यथा योग्य सिद्धि को प्राप्त कर लेने पर वो तपस्वी सकाम तपस्वी भी महाराज है फूल जाता है, है? कहते हैं इस प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित से पुनः जो है उदाहरण देते हैं। सरस्व शांतरोधस्व न्यूसुरांग पिशारशः ग्रहेषु शांत कृत्येषु ग्राम्या एव दुराशया। सुखदेव जी ने जो है अविवेकी पुरुष का यहां उदाहरण दिया है, कहते हैं कि जिस प्रकार से सरों के जो तट हैं, तालाबों के जो तट हैं, उसमें जो है कांटा कीचड़ जल और जल का बहाव यानी कुछ ना कुछ गंदगी यानी अशांत क्षेत्र रहता है, कहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी जो सारस नाम का पक्षी है, जो बगुला है, वो उस तट को छोड़ता नहीं है। कहते हैं कीचड़ भी है, जल में एक गति भी है और उसके संग संग उस जल के किनारे किनारे कांटे भी उगाए हैं, तरह तरह के जो पौधे होते हैं कांटे के वो भी लगे हुए हैं। इतना सब कुछ दूषित वातावरण होने पर भी वो सारस, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित उस किनारे का तालाब के तट का जो है परित्याग नहीं करता है। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से ग्रहेषु अशांत कृत्येषु, कहते हैं रात दिन जगत के कार्यों में लगे हुए जो अशांत गृहस्थ हैं, उस जो है सारस की भांति, जैसे वो सारस लोभ के कारण, मछली के लोभ के कारण, जीव के भोजन करने के लोभ के कारण वो उस तट को छोड़ता नहीं है, उस गंदगी को सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन भोजन का लोभ होने के कारण उस जो है तट को वो नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से गृहेश वशांत कृत्येषु, यानी जो काम धंधों की झंझट है, विषयी पुरुष यानी विषयासक्त मनुष्य जो है, जिसको इस विषयों में रस आता है, वो महाराज इतना सब कुछ अशुद्ध हाय हाय किटकिट वाले वातावरण को कदाचित विग्राम्या ग्राम्या इव दुराशया, उस स्थान का, अपने घर का, अपने ग्राम का परित्याग नहीं करता है। यद्यपि वो परेशान भी है, लेकिन उस परेशानी में परेशान होकर ही वो प्रसन्न है। ये जो है अविवेकी पुरुष की क्या है, स्थिति है। वो उस अशांत वातावरण का परित्याग नहीं करना चाहता हमारा है, उसी में ही उस जगह में ही स्थित होकर अपने आप को संतुष्ट करने की चेष्टा करता रहता है। ये अविवेकी गृहस्थ की स्थिति जो है दर्शाई है वर्षा काल की स्थिति के द्वारा। जिस प्रकार से बारंबार मेघों के बरसने पर तालाब के जल में भी, जो बिल्कुल स्थिर रहता है जल, उस तालाब के जल में भी महाराज तरंगे उठने लगती हैं। जल के बढ़ने पर बार बार उसमें भी हवा के झोंके उस जल को फेंकते हैं। यद्यपि वो बगुला जो है, सारस जो है, बड़ा परेशान रहता है, लेकिन परेशान रहने पर भी वो उस तट को छोड़ता नहीं है। जैसे विषयासक्त गृहस्थ जो है, वो दुनिया भर की झंझटें अपने सिर के ऊपर लादे रहता है, लेकिन वो उसी झंझटों के द्वारा ही अपने आप को प्रसन्न करने की क्या करता है, चेष्टा करता है अपने कार्यों की। जैसे हमारे यहां देखिए विवाह है ना, हमारे यहां विवाह जो है, एक जैसे छोटे छोटे बच्चे आपने देखा ना, गुड्डे गुड़िया का क्या करते हैं, विवाह करते हैं, है ना। तो वो जो बच्चे हैं, वो गुड्डे गुड़िया के विवाह के लिए आपने देखा कोई टेंशन लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, खेल है उनके लिए, वो क्या है, एक खेल है। इसी प्रकार से हमारे यहां भी विवाह जो है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, एक खेल के रूप में दिया गया था गृहस्थ जीवन में। लेकिन अब देखो जरा समस्या क्या है, अब गृहस्थ जो है अपने बच्चों का विवाह कर लेना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानता है। जो गृहस्थ अपने बच्चों का सकुशल विवाह कर लेता है, वो सोचता है कि मैं क्या हो गया, धन्य भाग्य हो गया हमारा। देखो ये हमारी स्थिति हो गई, जो खेल थे उनको हमने क्या बना लिया, जीवन का लक्ष्य बना लिया हमारा। जब उन सब चीजों से वो निवृत्त हो जाता है, ये जो कह रहे हैं अशांत क्षेत्र है ना, सुखदेव जी कहते हैं ये जो अशांत क्षेत्र हमने बना लिया, ये जो साधारण से जो खेल थे गुड्डे गुड़िया के, वो गुड्डे गुड़िया के खेल को हमने जीवन का क्या बना लिया, लक्ष्य बना लिया महाराज। और उस लक्ष्य की प्राप्ति पे हम सोचते हैं हमारा मनुष्य शरीर धन्य हो गया। 84 लाख योनियों में इतना चिंतित आपको कोई नहीं मिलेगा जितना चिंतित ये मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में है। देखा कभी किसी जीव को आपने देखा है कि अपने बच्चों के विवाह के लिए परेशान होता हो? क्यों नहीं होना पड़ता? क्योंकि उसकी आपकी तरह उसको पार्टी नहीं करनी होती, आपकी तरह उसको सोना चांदी नहीं जोड़ना होता, आपकी तरह उसको शादी का सामान नहीं जोड़ना होता, आपकी तरह उसको जो है इन्विटेशन नहीं भेजने होते, इसलिए वो बिल्कुल स्वतंत्र है, आनंद लेगा। कब उसके बच्चों की शादी हो जाती है उसको खुद नहीं मालूम। और हम आप अपने बच्चों के जीवन की विवाह रूपी कार्य को कर ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे हमने धरती का भार उतार दिया। क्यों भाई, लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा ही लगता है महाराज। और कहीं कहीं तो इतनी विभत्स स्थिति हो जाती है महाराज कि माता पिता आत्महत्या तक करने को, या बच्चे आत्महत्या तक करने को क्या हो जाती, धन नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा, इस चिंता में ही महाराज अपने जीवन लीला को ही इस सुंदर मनुष्य हैं जिसको देव दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो श्रीमद् भागवत कहती है, ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला जिसमें हम अखंड सत्ता का, अपनी वास्तविक जो स्वरूप का दर्शन कर सकते थे उसको भूल करके एक साधारण से क्रियाकलापों को कहते हैं उसी में फंसे हुए कीचड़ दलदल में खड़े हैं और उसी में जो है अपने स्वाद को ढूंढने की वो बगुला क्या कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। ये विषयाशक्ति है हमारा, उसी में ही हम स्वाद ढूंढने की क्या कर रहे हैं, चेष्टा करते हैं और भगवान के ऊपर ले जाके थोप देते हैं कि हमारी बहू की बुद्धि शुद्ध कर दो, हमारे बेटे की बुद्धि शुद्ध कर दो, हमारे फलाने की। करते हो कि नहीं करते? ये जीवन के मुख्य लक्ष्य हो गए जिनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं था। हमारा सब अपने अपने प्रारब्ध को लेके आए हैं और सब अपने प्रारब्ध को भोगेंगे। दूसरे के प्रारब्ध में तुम कुछ नहीं कर सकते, जब अपने प्रारब्ध में नहीं कर सकते दूसरे में कर सकते हो क्यों भाई? जब हम अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते, ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया सो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये सब जो हमारे प्रारब्ध में, विधि का मतलब जो हमारा प्रारब्ध, हमारा अपना लेखा जोखा है, बैलेंस शीट है, उसका भुगतान स्वयमेव हमको ही करना, कोई दूसरा उसमें मदद करने वाला नहीं है और ना भगवान उसमें व्यवधान डालने वाले। सबको भोगना पड़ेगा, चाहे तुम अज्ञानी हो तो और ज्ञानी हो तो, ज्ञान भी हो जाए, बोध भी हो जाए, आत्मबोध भी हो जाए, तो भी महाराज इस शरीर का प्रारब्ध तो जैसा का तैसा ही रहेगा। इसका प्रारब्ध बदलने वाला नहीं है। तुम सोचो कि हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो शरीर में कैंसर नहीं होना, तो कैंसर नहीं हो, कैंसर होना है तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। कैंसर होना है तो होगा ही होगा, चाहे तुम अज्ञानी रहो और चाहे तुम ज्ञानवान हो जाओ। इसलिए वो उस कीच से अलग हो जाता है। ये तो शरीर का प्रारब्ध है, वो शरीर को जो करना है उसको करने दो। तुम चाहे अज्ञानी हो, अगर आपके शरीर को स्वस्थ रहना प्रारब्ध में लिखा है तो आप चाहे अज्ञानी हो तो भी स्वस्थ रहोगे और ज्ञानी हो। पूछते थे महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गले में जब कैंसर पानी उतरना भी मुश्किल होने लगा तो भक्त ने पूछा, महाराज आपने दुनिया के लिए माता से प्रार्थना की और दुनिया के लोगों को हमने ठीक होते हुए देखा, आप माता से अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब मैं माता के सामने बैठता हूं मुझे माता के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं प्रार्थना तो तब करूं जब मुझे अपना शरीर दिखाई दे, शरीर दिखाई दे फिर बीमारी दिखाई दे, मुझे अपने शरीर का ही होश नहीं रहता, मुझे केवल माता ही माता दिखाई देती। ये स्थिति उनकी है जिनको तकलीफ है। और दूसरी तरफ जब उनसे लोग दुख व्यक्त करते थे तो स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने उदाहरण दिया। उन्हीं के जो है कुटिया, जो विशाल आश्रम दक्षिणेश्वर का मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के मंदिर हैं, 12 मंदिर तो भगवान भोलेनाथ के हैं, काली माता का मंदिर है और फिर रहने के स्थान है, इतना बड़ा क्षेत्र है महाराज। वहीं पर महाराज एक जो है कोई व्यक्ति रहता था तो 62-65 साल की आयु में वैश्या के लिए भोजन लेके जाता था रोज। उसके शरीर में एक भी बीमारी नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं एक बात बताओ कि उसके शरीर में एक भी बीमारी नहीं है और रोज वो सुबह शाम किसके लिए भोजन लेके जाता है, अपने हाथ से भोजन बना के किसके लिए? तो उससे पूछते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस, क्या मैं करूं बताओ, माता की आराधना करूं या मैं भी यही करना शुरू कर दूं? क्यों भाई, अगर यही स्वास्थ्य का कहते तरीका है स्वास्थ्य प्राप्त करने का, तो मैं भी कल से क्या कर देता हूं? ऐसा नहीं। तो जिसका जो प्रारब्ध है उसके प्रारब्ध में ये कार्य करना लिखा है, स्वस्थ शरीर लिखा है, तो वो बुरा कार्य भी कर रहा है तो भी उसका शरीर कैसा है? इससे तपस्या और अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। हमने जो किया है, जैसा किया है, वैसा हमको भीष्म पितामह को बाणों की सैया प्राप्त हुई महाराज, मखमल के गद्दे नहीं प्राप्त हुए। ये जो उदाहरण है शास्त्रों में इसीलिए हम लोग वेदांत वेदांत करते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि पढ़ तो जाते हैं वेदांत लेकिन जब दुख तकलीफ आती है तो पूछते महाराज हमको ऐसा क्यों हुआ? ये जो समस्या है बड़ी गंभीर है महाराज, हमको ऐसा क्यों हुआ, मतलब हमने वेदांत पढ़ के क्या भगवान के ऊपर एहसान कर दिया है? ये तो हम जो कुछ भी करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। वेदांत का अध्ययन किया, अध्यात्म चिंतन किया, ये सब हमने अपनी प्रसन्नता के लिए किया। इससे शरीर के प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा शरीर का प्रारब्ध बदल जाएगा। वो तो जो हमने किया है उसका भुगतान हमको अवश्यमेव। अरे भाई एक बात बताओ, तुम 1 लाख रुपए की गड्डी बैंक में लेके जाओ, उसके बीच में एक खराब नोट लगा दो, वो पूरे नोट गिनेगा बैंक वाला और आखिरी में आपको क्या कर देगा, वो खराब वाला नोट आपको क्या कर देगा, आपको देगा या पड़ोसी को देगा? आप तो यही चाहते हो कि हमारा नोट हमको रिटर्न करने की बजाय किसको दे दे। भाई आपने इसीलिए तो लगाया उसको, चालाकी तो आपने यही खेली थी कि महाराज ये जो है देखे ना और हमारा काम हो जाए। लेकिन महाराज वो बैंक वाला आपसे भी ज्यादा सतर्क है, उसने आपका ही नोट आपको क्या कर दिया कि नहीं कर दिया वापस। तो ये महाराज जो प्रारब्ध है ये आपको ही भोगना पड़ेगा, चतुराई नहीं चलेगी इसमें। हम अगर सोचें कि चतुराई चलेगी तो ये बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। इसके लिए महाराज स्वयमेव भुगतान करना है, अपना नोट स्वयं वापस लेना होगा, दूसरा नहीं लेगा जो हम चाहते हैं। तो इसलिए सावधान, ये जो हमने व्यर्थ की दिमाग में कल्पनाएं भर रखी हैं कि मैं आध्यात्मिक हो जाऊं, भगवान को मानने लगूं तो मेरे दुख तकलीफ दूर हो जाए, प्रारब्ध बदल जाए, तो प्रारब्ध बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है। एक प्रारब्ध के लिए आप स्वतंत्र हैं, ज्ञान अज्ञान के लिए आप स्वतंत्र हैं, विवेक को स्वीकार करें या अविवेक को स्वीकार करें, इसके लिए आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं। अगर अविवेक में आपको आनंद आता है तो उसका आनंद लो। यहां बगुले का उदाहरण दिया है, दुनिया भर का कीच है, दुनिया भर का झंझट है, दुनिया भर का नाटक है, लेकिन वो उसी में क्या है, प्रसन्न है, हाय हाय करने में ही वो प्रसन्न है, हमारा बड़ा खुश है कि आज मेरी जो है फलाना कार्य मैंने आज जो है सिद्ध कर लिया, आज मैंने गृहस्थी का फलाना कार्य निपटा लिया। कितने प्रसन्न होते हैं हम, छोटे छोटे साधारण से गृहस्थ जीवन के कार्यों को निपटा करके मनुष्य ऐसे प्रसन्न हो जाता है जैसे उसने धरती के भार को क्या कर दिया, हल्का कर दिया। हमारा होता कि नहीं, यही अनुभव करते हो हमारा, ऐसा लगता है कि जैसे हम ही ने सारी धरती का बोझ अपने ऊपर उठाया हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इसलिए वो अविवेकी पुरुष अपनी स्थिति से बिल्कुल भी अलग, दुराशा के कारण है ना, इसका कारण दिया उन्होंने दुराशया, ये जो बगले की दुराशा है जीव के भोजन करने की, उसके कारण वो वहां से नहीं हटता। इसी प्रकार से हमने बहुत सारी आशाओं को अपने गृहस्थ जीवन में सजा रखा और इसका परिणाम है उन आशाओं के कारण हम भगवान के नहीं हो पाते। ये जो हमारे चित्त की गति है ना, जो कल हम वैराग्य की बात कर रहे थे कि वैराग्य क्यों नहीं होता, दृढ़ क्यों नहीं होता, ये उसका उत्तर है हमारा दुराशया। ये जो हमारी बहुत सारी आशा की फांसियां उस गृहस्थ जीवन में लटकी हुई हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, ये जो कल्पनाओं के सागर में हम जीते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इसलिए वो उस स्थान को छोड़ता नहीं है, अन्यथा तो महाराज सब कुछ छूटा छुटाया रखा है। अरे छूटा छुटाया रखा कि नहीं रखा, यहां जितने लोग बैठे हो तुम्हारा घर तुम्हारे पास है या तुमसे दूर है? किसी के पास तो नहीं है, खीसे में पड़ा हो तो बता दो भाई, है? अब बोलो तुम्हारा है या किसी और का है? अरे तुम्हारा होता तो तुम्हारे पास होता कि नहीं होता? जो तुम्हारा है उसको तुम समझने की चेष्टा नहीं कर रहे। घर में जब थे तब भी तुम्हारे पास था, यहां आए तब भी तुम्हारे पास, कौन? इस हृदय में बैठा हुआ, इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ सब चीजें तुम्हारा, जिसको तुम अपनी गृहस्थी कहते हो, वो गृहस्थी तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लेकिन जिसको तुम पहचान नहीं पा रहे वो यहां भी तुम्हारे संग रहेगा। विश्व के किसी भी कोने में जाओ तो भी तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वो परमेश्वर, जो बिल्कुल भी तुम्हारा मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुमको शरीर से निकालकर अगली योनि में ले जाने वाला भी वही है हमारा, है कि नहीं है? देखो ये कितनी विचित्र बात है, जो हमारा है उसको हम अपना मानते नहीं और जो हमारा है नहीं उसी को हम अपना अपना करके उसी कीचड़ में क्या हो रहे हैं, उसी के चारों तरफ उसी किनारे में जो है धक्के खाते हुए महाराज घूम रहे हैं। कहते हैं सुखदेव जी इस प्रकार से वो अविवेकी पुरुष जो है दुराशा के कारण अपने क्षेत्र का बिल्कुल भी परित्याग नहीं करता है। उसके बाद एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया महाराज, जो ये तरह तरह के मत और पंथों का वैदिक मार्ग के ऊपर जो प्रभाव देखा जाता है उसका उदाहरण देते हैं। जलौघैर निर्विध्यंत शेतवो वर्षतीश्वरे पाखंडी नाम सद्वादैर वेद मार्गा कलौ यथा। कहते हैं जब वर्षा काल की धाराएं, वर्षा काल में इंद्र की जो है प्रेरणा से जब मूसलाधार बारिश होती है, सेतु जो सेतु और मेढ़ जो मेढ़े बनाते हैं किसान लोग अपने खेतों में पानी को रोकने के लिए और नदियों को नालों को पार करने के लिए छोटे छोटे पुल और बांध बनाए जाते हैं पानी के संचय के लिए, जब मूसलाधार वर्षा होती है तो महाराज वो सेतु वो बांध वो मेढ़ सब क्या हो जाती हैं, सब टूट जाती हैं और पानी जो है उनको तोड़ करके उनमें से बहने लगता है। कहते हैं इसी प्रकार से पाखंडी नाम सद्वादैर वेद मार्गा कलौ यथा। कलिकाल में जो है सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कलिकाल के प्रभाव से जो है क्या हुआ, पाखंड ने जन्म लिया है। पाखंड का मतलब असत्य को ही धर्म मान लेना, असत्य को ही धर्म मानकर जो हमारा स्वभाव है महाराज है ना, भगवान के ऊपर भी हम असत्य को क्या कर देते हैं, थोप देते हैं। भगवान के ऊपर भी हम अपनी इच्छाओं को लाद देते हैं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करो। और इस प्रकार के ये जो पाखंड धर्म प्रारंभ हो गए है ना, और फिर उसमें हम अब सफाई देने की चेष्टा करते हैं, भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे, ऐसा बोलते हैं। क्या करते हैं, हाँ, भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। तो ऐसा जो हम अपने धर्मों को ही भगवान के ऊपर क्या कर देते हैं, थोप देते हैं महाराज, तो ये पाखंड धर्म प्रारंभ हो जाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जिस प्रकार से मेढ़ जो है किसान ने बड़े परिश्रम करके बनाई थी महाराज है ना, वो जो खेत को बांधने के लिए मिट्टी लगाई जाती मेढ़ जिसको कहते हैं, और जो नदियों के ऊपर नालों के ऊपर पार करने के लिए जो बड़ी मेहनत से पुल बनाए गए थे, जो जल का संचय करने के लिए बांध बनाए गए थे, लेकिन महाराज बड़ा परिश्रम किया गया उनमें, लेकिन वो सारा परिश्रम क्या हो गया, एक ही बार में सब नष्ट हो गया महाराज। इसी प्रकार से हमारे ऋषियों मनीषियों ने इतना अनुसंधान कर करके महाराज वैदिक धर्मों को प्रकाशित किया है ना, और तब उस वैदिक धर्म के प्रकाश में उन्होंने जो है हमको सब जो बताया वो महाराज इतना कठिन है कि त्याग करने के नाम पर ही हमारे प्राण क्या होने लगते हैं। अरे भाई हमारे यहां नियम है, साधारण सा नियम है, किस गृहस्थ जीवन में किसी ना किसी अतिथि को रोज भोजन कराने के बाद तब भोजन करो, ये गृहस्थ जीवन का साधारण सा नियम था पूर्व काल में, अब तो नहीं है। आपने अपने माता पिता के समय में देखा होगा कि ऐसा होता था, और जिस दिन कोई अतिथि भोजन करने नहीं आता था उस दिन वो मानते थे कि आज हमसे कोई पाप हो गया। अब उल्टा हो गया, अब कहानी क्या हो गई, अब तो अतिथि आ जाए तो सोचते हैं कि आज कोई हमसे पाप हो गया है ना, ये कहां से आ गया महाराज, अब इसको जो है खाना तो बहुत दूर की बात, रोटी तो बहुत दूर की बात, इसको क्या बना के पिलानी पड़ेगी, एक कप चाय बनाना भी अब हमारे लिए क्या है, गंभीर समस्या है महाराज। जरा सोचो अगर चार सदस्य घर में हैं तो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि चाय कौन बनाएगा, है कि नहीं स्थिति ये। पहले महाराज ये मानते थे कि आज कोई आया नहीं तो भोजन कैसे होगा, अब ये मानते हैं कि आ गया अब इसको जो है पूछना पड़ेगा कुछ ना कुछ, उल्टे हो गए सारे कर्म ही हमारे उल्टे हो गए। विपरीत कर्म करने के पश्चात हम सोचते हैं हमको परमेश्वर मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, ये तो साधारण से हमारे यहां गृहस्थ जीवन के कुछ नियम हैं। उन नियमों के पालन करने से ही हमारे अंतःकरण की साधारण गृहस्थ जीवन में हमारा शुद्धि हो जाती थी और इसका परिणाम ये होता था कि ज्यादातर गृहस्थों को सदगति प्राप्त होते हुए हमने देखा। बहुत हमने तो बचपन में देखा महाराज कि खबर आती थी कि फलाने का शरीर छूटने वाला है, फिर धीरे धीरे उसके एक एक अंग जो है बंद होने शुरू होते थे महाराज, फिर उसकी वाणी बंद होती थी, तब जाकर वो सबसे जो है मेल मिलाप सब होने के बाद तब उसका शरीर क्या होता था। ऐसा महाराज जीवन पहले सदगति वाला, एक एक इंद्रिय साथ छोड़ती थी। अभी तो कुछ पता ही नहीं है कहां मरेंगे, कहां जिएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, होता है कि नहीं होता। तो आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा हमारा, तो सदगति तो बिल्कुल साधारण से। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जैसे गृहस्थ जीवन वैसा ही था, लड़ाई झगड़े पहले भी होते थे, आपस में वाद विवाद पहले भी होता था, लेकिन हृदय स्वच्छ होने के कारण उनको इस प्रकार की सदगति प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, प्रॉपर्टी का विवाद नहीं होता, सब कुछ होता था, लेकिन फिर भी मेल मिलाप बना रहता था। ये हमारा साधारण सा गृहस्थ जीवन था हमारा, तब सदगति की प्राप्ति हो जाती थी उनको। अभी तो हमारा दुर्गति है, इतना सब कुछ भंडार है, लेकिन महाराज हम एक दूसरे की शकल देखने को तैयार नहीं है। सब प्रेम समाप्त हो गया, अंदर के भाव समाप्त हो गए। जब इस साधारण से खेल को हम जीत नहीं पाए, उस परमेश्वर को हम क्या जीतेंगे महाराज, सोचने वाली बात है। सुखदेव जी कहते हैं वैदिक धर्मों का पूर्णतया विनाश हो गया, उनकी सारी पकड़ ढीली पड़ गई महाराज। और जो है क्योंकि इतने परिश्रम से बनाए गए वो पुल, वो मेढ़े, वो तरह तरह के जो आयोजन उसको पानी को रोकने के लिए किए गए थे, सब व्यर्थ हो गए महाराज। मूसलाधार बारिश सब बहा ले गई। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर वासनाओं का प्रवाह चला, तो उस समय उसने महाराज, उस बारिश ने सब कुछ वैदिक धर्मों को बहाकर क्या कर दिया, सब बहा के फेंक दिया महाराज। और हम अपने संपूर्ण शुभ कर्मों को क्या कर बैठे, सब भूल गए। और भूलने में ही हम अपने आप को, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भूलने में अपने आप को पापी माने तो भी बात समझ में आती है, लेकिन समस्या उल्टी है। भूलने पे तो हम अपने आप को मान बैठे हैं क्या ना बुद्धिमान, चतुर समझ रहे हैं हम अपने आप को कि हमने बड़ी चतुरता की, कि हमारे माता पिता गलत थे जो ऐसा करते थे। गलत नहीं थे महाराज, उनके द्वारा ही तो ये जो कुछ हमको मिला है, इस उन्हीं की वजह से तो मिला है। अगर वो ऐसे नहीं होते तो आज क्या हम सत्संग कर रहे होते भाई, बिना संस्कार के क्या आपके अंदर एकाएक हो जाता कुछ समझ में भी नहीं आता महाराज, जो आपको अपने माता पिता से मिला, क्योंकि उन्होंने जीवन में सहज किया ये सब। अगर आप लोगों की स्मृति ठीक हो तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा अनुभव सबके पास होगा है? स्वाभाविक आपने अपने घरों में ये जो वृत्तियां हैं, जो वैदिक धर्म की वृत्तियां हैं, स्वाभाविक देखी होंगी महाराज अपने घरों में। स्वभावता नित्य प्रति का नियम था उनके जीवन, उसका परिणाम है कि आज हमारा लड़खड़ाया हुआ जीवन भी संभल जाता है। ये संस्कार है, वैदिक धर्म लुप्त हो गया महाराज, हमारे जीवन से शुभकर्म चले गए, हमारे जीवन से जो है साधारण सी तपस्याएं सब क्या हो गई, साधारण चीजें थी, लेकिन अब उन्हीं को कर लेने पर अब हमारे बच्चे मंदिर चले जाते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं कितने धन्यवाद हैं। देखो कितनी विचित्र बात, कितना खुश होते हैं माता पिता कि मेरा बच्चा आज कहां गया, मंदिर गया, भगवान के सामने उसने हाथ जोड़ लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जो हमारे यहां सुबह से शाम तक का कर्म था हमारा, बोलो, तो ये साधारण से वैदिक धर्म जो सब सुखदेव जी कहते हैं कि उस विशाल जलधार ने अपने संग बहा दिया है, और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो साधारण सा, बिल्कुल साधारण सा गृहस्थ जीवन परम शांति और परम प्रसन्नता वाला था, वो सब अशांत हो गया, अविश्वसनीय हो गया। जो सबसे बड़ी बात है कि आज हमको किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। और पहले महाराज घर के नौकर को लोग चाबियां देके चले जाते, बोलो देखा कि नहीं देखा आपने ऐसा, ये देखा आपने, अपनी आंखों से अनुभव किया महाराज कि घर के नौकर को आप चाबी देके जाते थे, आज अपने अपने बच्चों के ऊपर माता पिता को विश्वास है, नहीं है, क्योंकि ये सब हमारी आपकी अपनी दुराशा और वासनाओं का परिणाम है। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से महाराज, इन इंद्र की जो भयंकर बारिश थी, वासनाओं की बारिश ने हमारे जीवन के अंदर से वेद मार्ग को समाप्त कर दिया और पाखंड मार्ग ने हमारे ऊपर शरीर में जो है क्या जमा लिया, घर बना लिया महाराज। उसके बाद सुखदेव जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से पहले हमारे यहां ब्राह्मणों को ही जो है विशेष धार्मिक जो आदेश वो देते थे उसी को जो है लोग पालन करते थे, तो उसी का उदाहरण यहां पर दिया है। व्यमुचन वायुभिर्नुना भूतेभ्यो भूतेभ्यो थामृतम घना यथाशिशो विषपत्या काले काले द्विजेरिता। कहते हैं यथा अशिशो वित्तपतया काले काले द्विजेरिता। कहते हैं जिस प्रकार से वायु की प्रेरणा से, क्योंकि अगर वायु की प्रेरणा ना हो तो बादल स्वयं की अपनी शक्ति नहीं रखते हैं बरसने की। जो वर्षा होती है उस आपने देखा होगा कभी कभी वर्षा काल में बहुत घने बादल छा जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस अब थोड़ी देर बाद क्या होगी, मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन आधे घंटे बाद आप फिर देखते हैं ऊपर उठाकर तो सारे बादल क्या हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं और महाराज वहां पर सूरज चमकने लगता है, आपका मन निराश हो जाता है, ये क्या हुआ। तो ये सारा खेल वायु का है। जब उन बादलों को ठंडी वायु मिलती है तो वो ठंडी वायु की प्रेरणा से बादल वहीं पर अपने आप को क्या कर देता है, बरसा देता है। ये प्रेरणा है वायु की प्रेरणा। तो वही यहां पर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से वायु की प्रेरणा से वो सुंदर घना बादल जो है अपने को क्या कर देता है, बरसा देता है, उसी प्रकार से पूर्व काल में राजा लोग या बड़े बड़े जमींदार जो है ब्राह्मणों की प्रेरणा से, क्योंकि ब्राह्मण ही ग्रंथ के जो है बोलने वाले या समझाने वाले माने जाते थे, तो कहते हैं यथा अशिशो वित्तपतया, कहते वित्त के जो पति यानी जो धनपति होते थे, काले काले द्विजेरिता, समय समय पर प्रजा की रक्षा के लिए या प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करने के लिए, क्योंकि आपने शायद सुना होगा पहले पूर्व काल में जो दान होते थे वो कैसे होते थे, कुएं बनवाना, बावली बनवाना, घाटों में सीढ़ियां बनवाना, है ना, देखा आपने बनारस का दृश्य देखा होगा महाराज, वहां पर 80 घाट हैं, कितने घाट हैं, इसीलिए उसका नाम आखिरी घाट का नाम है 80 घाट। तो सब मिला के एक तरफ से गिनना शुरू करो तो कितने घाट हैं, और सब ज्यादातर वहां पर घाट बनाए हुए महाराष्ट्र वालों के, अहिल्याबाई घाट है महाराज, है होलकर, अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ, बड़े जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े राजा थे उनका सबका वहां पर निवास स्थान था हमारा। तो जितने पहले ये सब जो है दान माने जाते थे, क्योंकि उन घाटों के बनने से साधारण जनमानस को स्नान करने में क्या मिलती थी, सुविधा मिलती थी। इसी प्रकार से कुएं, जल की व्यवस्था पहले दो ही चीजों से होती थी, एक तालाब से और दूसरा कुएं से। देखो बंबई में अभी भी आपके बाण गंगा है कि नहीं, पहले ये जल का साधन था महाराज बंबई नगरी में पूर्व काल में, जब जो है ये पानी का टैंक नहीं बना था आपका, जिसको आप हैंगिंग गार्डन बोलते हैं, हैंगिंग गार्डन जो है अंग्रेजों का बनाया हुआ पानी का क्या है, टैंक है कि नहीं। देखो उस समय बिजली नहीं थी, तब महाराज उन्होंने टेक्नोलॉजी लगा के आपके लिए जल की व्यवस्था की, लेकिन उससे पहले इस नमकीन जल के बीच में एक मीठे जल की व्यवस्था कौन किसने की, भगवान ने की बाण गंगा के रूप में। तो इस प्रकार के जो ये कार्य थे, बहुत पुराना स्थान बाण गंगा जो है बालकेश्वर में, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे यहां पहले ब्राह्मणों के दिशा निर्देश से कहां पर बावली बनवाने, कहां कुएं बनवाने, कहां धर्मशालाएं बनवानी हैं, है? यात्रियों के रुकने के लिए एक सुंदर व्यवस्था धर्मशाला के रूप में होती थी, क्योंकि पहले जो है इस तरीके का व्यापारिक वातावरण नहीं था, इसीलिए उनको धर्मशाला कहा जाता था कि जब भी कोई जाए उसको रहने के लिए मुफ्त में, है? उसके लिए उसको कोई खर्चा नहीं देना पड़ता था, मुफ्त में वहां वो रुक सकता था। तो ये इस प्रकार की जो ब्राह्मणों की प्रेरणा से जो बड़े बड़े धनपति पूर्व काल में होते थे, वो उनके कहने पर उनकी प्रेरणा से इस प्रकार के जो है समय समय पर प्रजा की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वृक्षों का लगवाना, बगीचों का बनवाना, ये सारे कार्य हमारे यहां ब्राह्मणों की प्रेरणा से ऐसा माना जाता है, पहले लोग करते थे। तो इस प्रकार से बादल जो है, जिस प्रकार से बादलों को बरसने के लिए वायु की प्रेरणा की आवश्यकता है, इसी प्रकार से धनपतियों को भी अपने धन का सदव्यय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के लिए आता है कि भगवान ने जो है धन का सदव्यय करने के लिए गौ सेवा का जो है कार्य प्रारंभ कराया, गौ यज्ञ कराया है ना, जो गौ माता के पालन गौशालाओं को बनवाने का जो कार्य भगवान ने कराया, ये धन का सदव्यय था, जीव की रक्षा, जो हमारे यहां पहले के ये सब नियम है धन का सदव्यय। तो इस प्रकार से महाराज जो है सुखदेव जी कहते हैं वर्षा ऋतु धीरे धीरे जो है अपनी पूर्ण युवा अवस्था में आ गई और चारों तरफ महाराज हरियाली ही हरियाली। और हमारे ग्रंथों में क्योंकि ये कम से कम अगर वैज्ञानिक दृष्टि से माने तो कम से कम 2000-2500 साल पुराना तो ग्रंथ है ही है ना, और यदि वैसे माना जाए तो लगभग जो है 3000-3500 वर्ष पुराना होना चाहिए। तो हमारे यहां का आपने एक शब्द सुना है खजूर, खजूर खाते नहीं, ये खजूर जो है ये कितना प्राचीन शब्द है, देखो आप श्रीमद् भागवत में खजूर शब्द आया है। हम लोग ऐसा समझते हैं मुस्लिम शब्द है, हैं ऐसे ही अनुमान था ना भी आप अभी तक आप लोगों को, लेकिन ये संस्कृत का शब्द है महाराज। एवं वनम तद वर्षिष्ठम पक्व खजूर जम्बुवत, जिस ये वृंदावन के फल है महाराज, जामुन और खजूर के वृक्षों से भरा हुआ था, कौन वृंदावन। एवं वनम तद वर्षिष्ठम पक्व खजूर खजूर जम्बुमत, कहते हैं चारों तरफ वृंदावन में महाराज पके हुए खजूर और जामुनों की शोभा थी। इसी प्रकार से जो आप मसूर की दाल बोलते हैं, वैदिक काल का शब्द है मसूर, आप जब रुद्री अष्टाध्यायी से जो है अभिषेक करते हैं, देखो वहां पर मरुस मसूराष्ट में जब भगवान से मांगते ना, उसमें सीधा शब्द आया मसूराष्ट में कि हमको जो है मसूर की प्राप्ति हो। ये इस प्रकार से पता लगाया जाता है कि ये शब्द कहां से कितना पुराना चला महाराज, वैदिक वांग में, वेद की भाषा संस्कृत नहीं है। जो हम ये पुराण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं या वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, ये सब संस्कृत है, लेकिन वेद की जो भाषा है वो वैदिक वांग्मय है, वो संस्कृत नहीं है। संस्कृत का मतलब है जो शुद्ध कर दिया गया, संस्कृत का मतलब जिसका शोधन हो गया वो संस्कृत हो गई। तो संस्कृत जो है ये बाद में, और इसके ऊपर जो है पाणिनि जी की व्याकरण जो है उपयोग होती, लेकिन वैदिक जो वांग्मय है, वैदिक जो भाषा है उसको समझना बड़ा कठिन है। तो इसलिए वो जो है महाराज रहस्य बन के रह गए वेद। तो यहां पर जो है बताया गया कि किस प्रकार से वृंदावन में जो है वर्षा ऋतु में ये जो खजूर का जो सीजन है वो कौन सा है, और दो चीजें हैं, ये जो छुआरा आप खाते हैं, छुआरा ही खजूर का क्या है, क्यों भाई छुआरा क्या है, थोड़ा सा साधारण सा जीवन भी जान लो क्या होता है। पहले मुझे भी बड़ा भ्रम था, मैं ऐसा सोचता था कि खजूर को सुखाकर क्या बनाया जाता है छुआरा, लेकिन ऐसा नहीं है, जो चीज जो कच्चा होता है वो खजूर, जैसे आप केरी बोलते हैं ना, और जब पक जाता है तो वो आम बन जाता है, जब कच्चा होता है तो केरी होती है, वैसे ही जो कच्चा होता है वो खजूर, और जो पक जाता है क्या नाम उसका छुआरा, जो कच्चा होता है वो छुआरा कहलाता है और जो पक जाता है तो वो खजूर बन जाता है। देखिए कितनी विचित्र बात है, उल्टी प्रक्रिया है। मैं ऐसा सोचता था पहले, मुझे भी ऐसा ही भ्रम था कि खजूर को सुखा करके क्या बनाते हैं, छुआरा बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारे व्यापारी लोग कुछ प्रेमी हैं जो व्यापार करने के लिए पाकिस्तान सिंध क्षेत्र से आता है, ये जो आप छुआरा खाते हैं ये कहां से आता है, सिंध का है हमारा, शक्कर सिंध का जो है छुआरा आता आपके यहां, तो क्योंकि पाकिस्तान से ही आता है छुआरा, खजूर नहीं आता हमारे यहाँ, खजूर जितना भी आप खाते हैं सब इधर से आता है, मिडिल ईस्ट की तरफ से, वहां से छुआरा नहीं आता। जो छुआरे का बिजनेस करते हैं वो केवल छुआरे का, जो खजूर का। लेकिन भगवान के समय वृंदावन में भी क्या था, खजूर था। देखो एवं वनम तद वर्षिष्ठम पक्व खजूर जम्बुवत, कहते हैं उस समय पूरा वृंदावन जो है जामुनों और खजूरों से जो है भरा हुआ था महाराज, और ऐसी स्थिति में ऐसे सुंदर वातावरण में भगवान बलराम और जो है गो गोपाल ऐर्वत्यो रंतु संबला प्रावशद्धरि, कहते हैं भगवान श्री हरि बलराम के संग ग्वाल वालों के संग उन गऊओं को लेकर उन बनों में महाराज प्रवेश करते थे, और गाय जो है सुंदर हरी हरी घास खाकर जो है पूर्णतया उनका शरीर सौसौ सुंदर हो गया था। इस प्रकार से भगवान आनंद मग्न होकर कहीं कहीं पर झरने बह रहे हैं महाराज, और जो है सुंदर सुंदर मधुर जल उनमें से निकल रहा है, झरझर की आवाज आ रही है, और कहीं कहीं पर उस बारिश से बचने के लिए छोटी छोटी गुफाएं बनी हैं, और वो छोटे छोटे बालक उन गुफाओं में छिपकर वर्षा काल में अपने आप को बारिश से बचाते थे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इस प्रकार कभी किसी चट्टान के नीचे कभी किसी चट्टान के ऊपर बैठकर भगवान जो है दही दाल भात हैं साग जो भी घर से लाते थे उस सुंदर वर्षा ऋतु में सब लोग छोटे छोटे बच्चे बैठकर उस हरियाली के मध्य में गाय बछड़े बछियों के संग महाराज उसका क्या लेते थे आनंद लेते थे महाराज। इस प्रकार से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थनों में भरा हुआ गायों के दूध और कहते हैं वृंदावन की अपार शोभा उस समय हो रही थी। इस प्रकार से भगवान अपनी ही रची हुई लीला को देखकर प्रसन्न होते थे, कहते हैं ये सब भगवान का क्या था, सब लीला विलास था, स्वयं का भगवान का अपना ही लीला विलास था। लेकिन महाराज जिस प्रकार से एक चित्रकार अपने ही चित्र को बनाकर मंत्रमुग्ध होकर उसको देखता है, इसी प्रकार से भगवान भी जुगाली करती हुई गाय चारा चरती हुई गाय को देखकर छोटे छोटे ग्वाल वालों को गाय बछड़े बछिया चराते हुए देखकर भगवान भी क्या होते थे, अपनी ही रचे हुए चित्रों को देखकर भगवान क्या हो रहे हैं प्रसन्न हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से बड़े आनंद का वातावरण उस ब्रज में छाया हुआ था, लेकिन वहां पर क्या हुआ, कहते हैं शनय शनय ऋतु ने करवट बदली। एवं निवसतो तस्मिन् रामकेशवयोर्ब्रजे शरत् संभवत् बिभ्रा स्वच्छाम्बुर परुषानिलः, कहते हैं इस प्रकार से धीरे धीरे वर्षा ऋतु बीत गई, आसमान साफ हो गया, बादल साफ हो गए, स्वच्छाम्बुर परुषानिलः पूरा आसमान साफ हो गया और बादल वहां से अंतर्ध्यान हो गए, आकाश निर्मल हो गया महाराज, और वायु जो है धीमी धीमी गति से बहने लगी, और धीरे धीरे शरद ऋतु का क्या हो गया आगमन हो गया। तो सुखदेव जी ने शरद ऋतु का किस प्रकार से वर्णन किया है ये आपको कल नहीं सुनाएंगे, कब सुनाएंगे, क्योंकि कल नवरात्रि का प्रथम दिवस है, कल माता भगवती के द्वारा जो है हम लोग अध्यात्म का चिंतन करेंगे, प्रथम दिन माता भगवती को याद करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।